તારીખ 30/8/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 370
ज्ञान गुण और चारित्र गुण दोनों ही आत्मा को प्रदान करते हैं। ऐसे पांच गुण तो मुख्य गुण है, तो पांच में भी ज्ञान मुख्य है। तो क्योंकि ज्ञान से समझाया जाता है, बिना ज्ञान समझ में भी नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि जो क्रोध में चारित्र गुण की विकारी पर्याय है उसमें ज्ञान नहीं है, क्रोध जान नहीं सकता, क्रोध में जानने का कोई कार्य नहीं होता, क्रोध यानी कोई भी विभाव हो उसमें जानने का कार्य नहीं होता। ज्ञान एक प्रकाश जैसा जीव के अवस्था में गुण में पर्याय है, उसको प्रकाश ज्ञान प्रकाश है, तो जिसको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। और राग क्रोध आदि चारित्र गुण की अवस्था है, इसमें जानने का नहीं होने से प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, क्या है प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। तो कहते हैं कि अंधकार में प्रकाश नहीं और प्रकाश में अंधकार में दोनों प्रतिपक्ष में है। तो ये कहा कि ज्ञान ज्ञान में है, उपयोग उपयोग में है और क्रोध में उपयोग नहीं है, मेरे रागादि विभाव में उपयोग नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न गुण के अवस्थाएं हैं और हमेशा भिन्न भिन्न ही रहती है, कभी दोनों एक एक होते न राग कभी क्रोध कभी ज्ञान होता और ज्ञान कभी क्रोध हो जाता, ऐसा कभी बनता नहीं, दोनों अपने अपने में हमेशा हमेशा सभी जीवन को रहता है। और क्रोध क्रोध नहीं है, उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है, और जो जीव के विभाव पर्याय है विकारी पर्याय है वो अपने आप में है, उसमें ज्ञान वास्तव में नहीं होता, खरेखर नहीं होता, निश्चय से नहीं होता, ये एक वास्तविक परिस्थिति है। क्या कहने का अभिप्राय है इस बात में कि हमारा अनुभव जो है इससे परिस्थिति कोई दूसरी है, ये भी परिस्थिति है। हमारा अनुभव क्या है कि ज्ञान और क्रोध भिन्न भिन्न अनुभव में नहीं आ रहा है, प्राप्त कर लेना आत्मशास्त्र है सुंदर भगवान का, और अध्यात्म शास्त्र में सिर्फ शब्दार्थ नहीं समझा जाता। हमारे जो शास्त्र स्वाध्याय करने की पद्धति है उसके विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण देना मैं आवश्यक समझता हूं। क्यों? क्यों पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपना संसार बुद्धि से चलाते हैं, परिश्रम बुद्धि का करते हैं, मजदूरी शरीर के लिए करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय में भी बुद्धि का उपयोग ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, शब्द के अर्थ समझते हैं, उसके भावार्थ समझते हैं, किसी नहीं से कहना चाहते हैं उसके नए अर्थ को भी समझते हैं, पर ये जैन मत में और अन्य मत में क्या अंतर है महार्थ भी समझ सकते हैं, समझ में कुछ समझ करने में कुछ युक्ति भी लगा लेते हैं, कुछ तर्क भी कर लेते हैं, कुछ अनुमान भी कर लेते हैं, उनके अपने भावों की बात कर रही है, तो वैसे अपने भावों में अनुभव होता है या नहीं होता है, इस अनुभव को बिना देखे जो आज एक बात मैंने बताई वही हम करते रहेंगे, तो हमारा स्वाध्याय अधूरा रहेगा। कितना अधूरा रह जाएगा अगर ये आप पूछेंगे तो कहेंगे कि करीब करीब बहुत सारा अधूरा रह जाएगा। भले ही ये फैक्टर है अनुभव वाला, पर सामने आर्गत फैक्टर है, फिर भी उसका परसेंटेज गिना नहीं जाता है। क्या तो ये तो ज्यादा मुद्दा है, ये एक मुद्दा है, एक मुद्दा की कीमत है या ज्यादा की, हम कहेंगे तो इसका भी शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, न्याय प्रमाण, तर्क प्रमाण, ये सब प्रकार से जो चार परिक प्रमाण है, उस सबसे बलवान को है तो अनुभव प्रमाण है। अगर हम ये बात को नहीं मानेंगे तो हम शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र पढ़ते हुए भी शास्त्र की बात को नहीं मानते। इसलिए ये ज्ञान है, ये क्रोध है, जो हमारे हर समय अनुभव में आने वाले परिणाम हैं, उनको बिना देखे, इस अनुभव को बिना अनुभव से बिना समझे, क्या अनुभव को तो अनुभव से ही समझा जाता है, अनुभव को न्याय तर्क से नहीं समझा जाता। जैसे स्वाद की चीज खाने से ही मालूम पड़ती है, देखने से या सुनने से नहीं मालूम पड़ती, वैसी एक चीज है आस्वाद की, अनुभव को आस्वाद भी कहते हैं। तो इसको हमारे अनुभव में जब आ ही रहे हैं और हर समय आ रहे हैं तो उसको बिना अनुभव से समझे अगर हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो बहुत बड़ी भूल रह जाएगी या बहुत बड़ी क्षति रह जाएगी अपने स्वाध्याय में, और अनुभव को नहीं देखते हुए हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो कभी हमें कभी हम अनुभव में नहीं आ पाएंगे। क्या होगा इसका अनुसार संक्षिप्त में शुरू बात किया, आगे कहते हैं कि आठ प्रकार के कर्मों में और नौ कर्मों में उपयोग नहीं है। क्या कहते हैं, आठ प्रकार के कर्म, नानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, गोत्र, नाम और वेदनी, ये आठ प्रकार के कर्म हैं। शास्त्रीय परिभाषा में उसको हम कर्म कहते हैं, लौकिक परिभाषा में हम उसको नसीब कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा नसीब क्या है, यानी तो कुंडली निकालते हैं, केमिस्ट्री अस्त्रेखा से देखते हैं तो किस 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 प्रकार के हैं, हमारे कर्म बंधे हुए हैं, कैसे कर्म हमें भोगने पड़ेंगे, उसको नसीब हम कहते हैं। और इस कर्म के जो फल होते हैं संयोग वियोग अन्य पदार्थ के, शरीर के संयोग वियोग, मकान आदि के, और भी पैसे कपड़े जितने भी हमारे कहे कहलाने वाले हैं, क्या हमारे कहलाने वाले जितने भी संयोग है उनको भगवान अपनी भाषा नहीं होती, दोनों प्रकार की परमाणु की अवस्था नहीं होती। अच्छा ये बात सीधी सारी समझ में आती है, क्योंकि जड़ चैतन्य अलग अलग जाति के पदार्थ होने से वैज्ञानिक तौर से जो चैतन्य जाति की अवस्था है उसमें जड़ जाति की अवस्था नहीं है, जड़ की अवस्था में चैतन्य की अवस्था नहीं है। दो गाथा में आचार्य महाराज ने यह कहा कि भाव कर्म में ज्ञान नहीं, ज्ञान में भाव कर्म नहीं, भाव कर्म में क्रोध, मान, माया, लोभ, राजा की विकारी अवस्था है, पहली गाथा में वो कहा। दूसरी गाथा में क्या कहा, 181 में वो कहा, 182 में क्या कहा, कि कर्म नो कर्म आदि जो जड़ है कि परमाणु की अवस्था है उसमें ज्ञान नहीं, ज्ञान में वो कर्म नो कर्म की अवस्था नहीं है।
एक तीसरी बात उसमें गर्भित है, क्या? क्रम की। क्रम या पहले कहने में भाव कर्म में ज्ञान नहीं, ज्ञान में भाव कर्म नहीं, वो पहले था। और परमाणु की अवस्था में पीछे कहने में भी एक परमार्थिक आशय रहा है। अपन सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं तो कोई भी बात जो विषय चलता है उसी के अनुसार उसी के विषय में ही प्रश्न आ सकता है, सुनते सुनते या घर पे भी कुछ जो प्रकर के आए हैं कुछ प्रश्न हो तो चलते अपने स्वाध्याय में प्रश्न करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तो पहले पीछे की जो बात चली तो पहला ये बात किया, पीछे वो बात किया, इसमें भी आचार्य महाराज का ये आशय समझ में आता है कि जिसको वेद विज्ञान का प्रयोग करना हो तो ये तीन चीज में से पहले भाव कर्म से तुम्हें चालू करना चाहिए, यही उपदेश है आचार्य महाराज का। अब देखिए जी जी हाँ, जब वेद ज्ञान भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से और नौ कर्म से करना चाहिए ऐसा उपदेश फरमाया तो उसमें वो भी फरमाया कि पहले आप जो भाव कर्म से वेद ज्ञान करना है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से मुक्ति से करना है, ये क्रम में से ये बात निकलती है। और हमारे कार्य पद्धति में या सभी वैज्ञानिक कार्य पद्धति में जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें क्रम का बहुत महत्व है, यानी क्रम समझना अनिवार्य है। अगर हम नहीं क्रम समझेंगे तो सारा कार्य चौपट हो जाएगा, जैसे हलवा चौपट हो जाता है वैसे। हलवा में तीन ही चीज है लेकिन आटा को पहले सिखाया जाता है, तीनों मिलकर के उसको चूल्हा पर रखने पर नहीं रख सकते क्योंकि तीनों बिगड़ जाएंगे। हलवाई नहीं बनेंगे, कोई चीज खाने वाला एक नहीं बनेंगे, या दूसरे काम के भी नहीं बनेंगे। दुर्गुण ये दृष्टांत के देते थे बार बार, तो इस दृष्टांत में कोई मुद्दा है तो क्रम का है, आप क्रम को समझो। बिना क्रम के समझो कोई भी बात करने लग जाओगे उसमें सफलता नहीं होगी, सब बात समय और शक्ति सब बिगड़ने वाले हैं। एक और भी उसमें प्रश्न है कि सर्वोक्षम ज्ञान में नौ कर्म पहले समझ में आता है, फिर इससे सूक्ष्म कर्म के परिणाम है और इससे सूक्ष्म भाव कर्म के भाव है। तो आचार्य महाराज ने ये बात यहां से क्यों नहीं लिया कि पहले तो आप वेद विज्ञान करो नौ कर्म से, कि मैं मकान से जुड़ा हूं, पैसों से मैं जुड़ा हूं, पानी उतर जाएगा उसके, पैसे से भी मैं भिन्न हूं, मेरा अधिकार नहीं है मेरे पैसे पर, पानी उतरने वाली बात है, और परिवार से भिन्न हूं उसमें भी पानी उतर जाएंगे, लड़का मेरा नहीं, लड़की मेरे नहीं, पत्नी मेरे नहीं, पति मेरा नहीं, पिता मेरे नहीं, माता मेरी नहीं, ये बात अच्छे पहले समझ में आती है, स्थूल ज्ञान में भी समझ में आती है, तुम यहां से वेद ज्ञान क्यों नहीं करवाया, ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। तो समझ में तो यहां से समझाएंगे, अगर समझ करनी है तो पहले स्थूल बात को समझाई जाती है, फिर सूक्ष्म बात को समझाई जाती है, लेकिन यहां सिर्फ समझ का अधिकार नहीं है, यहां प्रयोग का अधिकार है। क्या कहने में क्या अंतर है कि जिसको समझाना हो पहले, मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको देना है उसमें तो ये पद्धति है कि पहले स्थूल बात को समझाई जाए, फिर सूक्ष्म बात को समझाई जाए, तो वो अच्छी तरह समझ लेगा, क्या समझ सकेगा। लेकिन जब पूरी थ्योरी समझ में आ गई है जिसको और अब कुछ कार्य करना है, इस समझ का फल लाना है, यानी समझ को अंतर में उतारना है, क्या प्रयोग क्या चीज है? यदि एक प्रश्न है तो प्रयोग क्या चीज है कि जो समझी हुई बात है उसको अंतर में उतारनी हो तो प्रयोग में आना पड़ेगा। यानी जो शास्त्र के गुरु के सत्पुरुष के जो बोध हमें मिल रहा है उस बोध को परिणमन करना है, उस बोध को अंतर में उतारना है, तो इसके लिए प्रयोग की आवश्यकता रहती है। और हमारे लिए आजकल की प्रक्रिया जो है वो तो विचार तक थ्योरी थ्योरिटिकल नॉलेज तक सीमित रही है। हम प्रयोग में आए तो ही लेकिन प्रयोग की चर्चा भी हमारे यहाँ इतनी तत्व ज्ञान की लंबी चौड़ी चर्चा चलते हुए भी प्रयोग की चर्चा चल ही नहीं रही है, प्रयोग तो होगा ही। तो ये बहुत बड़ी क्षति या महत्वपूर्ण जिसका रोल है, जिसकी भूमिका है, इसको छोड़ करके हम सारी जिंदगी स्वाध्याय करते रहेंगे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते रहेंगे, ये बोध अंतर में उतरने वाला नहीं है, परिणमन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस ही बाकी है, पूरा प्रक्रिया ही बाकी रह गई है।
जी श्रोता भी बोलते बता मेरे तो मुझे बता।
हाँ आचार्य महाराज ने तो खुला रखा है हरेक के लिए। कितने पैसे में सुनी साल मिल रहा है हमारे यहाँ, इसका मूल्य देख लीजिए आप, उसमें भी डिस्काउंट मिलता है, पर्व के दिनों में तो उसमें भी डिस्काउंट मिलता है, 18 रुपया लिखा है इसमें। अब लौकिक टेक्निकल बुक 600 पाना के लेने को जाइए, हमने कभी बुक बंबई में से खरीदे हैं 500-600 रुपया लगा है, क्या 600 पाना के कोई टेक्निकल बुक लौकिक टेक्निकल जिसमें है उसका कहाँ 600 रुपया का 18 रुपया, वो भी पर्व के दिनों में 50-50% डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो कितनी सुविधा है, ये संसार मिटाने की, सर्व प्रकार के संसार के दुख मिटाने की और सर्वथा सुखी होने की टेक्निक है, ये टेक्निकल बुक है, वो हाईली टेक्निकल है, फिर भी उसका कुछ पैसे नहीं लगता। आजकल तो 18 रुपया तो वैसे ही फेंक देते लोग, 1 लीटर पेट्रोल आता है क्या, पूरा नहीं आता, ये हालत। इतनी सस्ती चीज बनाए तो इसकी कीमत चली जाए, बड़ा अपराध हो जाएगा। अगर कोई अमूल्य चीज जिसकी पैसा में मूल्य नहीं हो सकता, इसके मूल्य करने में जगत के कोई पदार्थ की टर्मिनोलॉजी नहीं है, नो टर्मिनोलॉजी, किस टर्म में इसका मूल्य करें आप, कोई टर्म में नहीं हो सकता। अगर ये मामूली पैसे में मिलते हैं पर हम इसकी उपेक्षा करें, तो जो कहना चाहते हैं जिस गहराई से जिस प्रयोग से उसमें नहीं जाए तो उपेक्षा हो जाएगी, तो ये बड़ा अपराध हो जाएगा। एक अपमान है, एक अवमानना है, जिसका फल अनंत संसार है। तो इसलिए वो जो कहना चाहते हैं उसको पूरी दरकार से, कितनी पूरी दरकार से कल मैं बात करी थी, मैं 5 मिनट के लिए दोहराता हूं कि जिसको अपना ध्येय बदलना है या बदला हुआ है, इसके लिए ये बात है। किसके लिए है? जिसको संसार नहीं चाहिए, जिसको संसार के सभी प्रकार के अभिलाषा और महत्वाकांक्षा पर क्या लगाना है, पूरी बड़ी से बड़ी चौकड़ी लगानी है, इसके लिए। जिसको संसार की अनुकूलताएं भी चाहिए और ये अपना मोक्ष यानी कल्याण भी आत्म कल्याण भी चाहिए। ये दो घोड़ा घोड़े की सवारी हुई नहीं सकती, संभव ही नहीं है, वो अशक्य है। एक घोड़े की सवारी होती है कभी दो घोड़े की सवारी नहीं सकती। या तो संसार के घोड़े पे बैठ जाइए, बैठे हुए ही है, बैठ जाइए क्या बैठे हुए ही है। अगर घोड़ा बदलना है तो जिन मंदिर में आ जाइए, स्वाध्याय में आ जाइए, नहीं बदलना है तो बताइए। कोई जबरन के काम करना करवाना नहीं है, ये बात तो अपनी रुचि की होती है। फिर अपनी रुचि नहीं है तो यहाँ आना भी बेकार हो जाएगा।
स्वाध्याय करते करते तो क्या हो जाती
है? हाँ, स्वाध्याय करते करते भी शिक्षा होती है। प्रश्न ये खड़ा होता है तो फिर साझा हम क्या करें? अगर उपेक्षा करनी हो तो हम साझा करने को आए क्या? बहुत काम है, बड़ा कारोबार है हमारा, ऑफिस चले जाते 7 बजे हो सकता है, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन ये बात है। अगर ये कड़ी से कड़ी शायद लगेगी, लेकिन अगर ये शर्त का हमें स्वीकार नहीं है तो एक तरह से ये शर्त नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है ये समझना चाहिए। सभी हमारे गुरुओं की आज्ञा है जितने भी हुए हैं, और सभी सत्पुरुष की आज्ञा है जितने भी हुए हैं। इन तीनों की आज्ञा पर पांव रखकर पैर रखकर के हमें चलना हो, अलग बात है, चल जाइए, स्वतंत्र हैं। अनंत काल इसमें ही बीता है और अनंत काल बीत जाएगा। अगर हमें हमारा वास्तव में कल्याण करना ही है तो एक एक बात को हमें जितना मूल्य है उतना मूल्य से ही अंगीकार करना होगा। सिर्फ समझना ही नहीं होगा, अंगीकार करना होगा। जब हित होगा इसको पहले नहीं, तो इसमें जो बात है कि अगर किसी को सूक्ष्म में ये बात समझानी है तो स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता तक समझानी पड़ती है। जब ये बात बुद्धि में अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो फिर इसका प्रयोग का विषय चलता है। तो यहाँ प्रयोग का विषय चल रहा है तो इसमें आचार्य महाराज कहते तो वहां आपको क्रम बदलना है। जैसा हमने कहा कि पहले भेद विज्ञान विभाव से करो, विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान करो, फिर कर्म न कर्म का भेद ज्ञान करने की जरूरत पड़ेगी। तो तीन को एक में ले लिया, हमारी सुविधा बढ़ी है, हमको सुगमता बढ़ाई है, कोई हमारी दिक्कत या कठिनाई बढ़ाई नहीं है, तो हमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इस पद्धति के सामने इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारी तो और सुविधा बढ़ी है, तीन गुण हो जाते हैं, एक में तीन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, हमारे तो बाहर हमारे तो परिसर में बचता है उसको। क्यों? कि ये जो विभाव परिणाम है ये दो पदार्थ के बीच में एक ब्रिज है, एक पुल है। क्या? एक और हमारा जीव है, एक और सारे पुद्गल परमाणु है, जिसको कर्म और नो कर्म दो विभाग में बांटे हैं। यहां पर दो तो पदार्थ है और हमारा दुख जो है वो तो जो बीच वाला जो भाव कर्म है इसके कारण से हमारे प्रयोजन किससे हैं? सुख दुख से हैं। किससे प्रयोजन है? अगर सिर्फ पैसों से प्रयोजन होता तो सभी पैसों वाले को सुख ही सुख होता। लेकिन ये बात आजकल क्यों साबित करने की जरूरत नहीं रही। जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज,
द्वार पे वेद ज्ञान करना है, और आप रास्ते में चल रहे हैं कैसे करोगे? प्रयोग के साधन तो उपस्थित होने चाहिए ना, हर वक्त मौजूद होने चाहिए आपके सामने, आपके अवस्था में, आपके पास, जभी तो प्रयोग हो जाए। तो होता नहीं, नौ कर्म तो सब जितने नौ कर्म है जिससे वेदज्ञान करना है तो सबको मिलेंगे नहीं, और वो चीज अलग पड़ी है जिसका अपने हमें अस्तित्व में नहीं है तो अनुभव कैसे करेंगे? प्रयोग तो अनुभव की चीज है, और अनुभव तो अपने पर्याय में जो परिणाम है, जो अवस्था है, जो भाव है, इसमें होगा। जो दूसरी चीज है उसमें अपना प्रयोग कैसे होगा? विचार हो सकता है कि मैं इससे दिन हूं, मैं इससे दिन हूं, प्रयोग कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा? हाँ, जिस जिस नौकर्म है उसका प्रवेश भाव का एक अध्यास होता है। जैसे मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे मीठा लगता है, मुझे कड़वा लगता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो तो जब लगे तब तो हर वक्त मौजूद नहीं है जैसे आप लेते हुए हैं, सब नॉर्मल है, तो उसकी है किससे आप विज्ञान करेंगे? ठंड लग रही है, न गर्मी लग रही है, न कड़वा लग रहा है, न मीठा लग रहा है। तो ये तो प्रवेश भाव जब इस प्रकार के संयोग बनते हैं तो प्रयोग किया जाता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेरे में वो आया, मैं उसमें गया, ऐसा जो मिथ्या अनुभव है उसको प्रज्ञान किया जाता है। लेकिन आचार्य महाराज ने पहले ये करवाया है, पीछे वो करवाया है, वो करवाया अवश्य है, पीछे की गाथा में वही करवाया है, लेकिन पहले वो करवाया है। इसका मतलब ये निकलता है कि आप यहां से शुरू हो, हमने यहां से शुरू किया है, आप जो रास्ते पे हम चले वही रास्ते पे चले। क्या हमारा रास्ता जो है अनुभव सिद्ध है? क्या है? अनुभव से सिद्ध हो चुका है तुम्हारे लिए वो अनजाना रास्ता है। क्या है? अनजाना है। तो नए गांव में सिटी में जाएंगे तो भी रास्ता पूछा पड़ता है, वहां का रहने वाला बच्चा हो तो ये तो आचार है। इसीलिए वो जो कहते हैं वैसे ही करें, उसमें ही हमारी भलाई है। जो समय है जाओ आगे की बात।